we go ahead and try to answer that question, or at least discuss that question regarding healing, gifts, and miracles.
तो आश्चर्यकर्म, चंगाई और वरदानों के बारे में हम जल्दी से बात करने थोड़ी देर.
Let me make several points on this subject.
मैं इस विषय पे कुछ बातों को बताना चाहता, बोलना चाहता हूँ.
You can listen or you can write this down.
चाहे सुन लीजिए, चाहे लिख लीजिए.
This is very important in India.
हमारे देश में बहुत जरूरी है ये.
Because there's much false teaching.
क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी झूठी शिक्षाएं हैं.
There's much false experience.
क्योंकि इसको लेकर बहुत सारे झूठे अनुभव हैं.
There are much false teachers that come on TV.
क्योंकि टीवी में बहुत सारे झूठे प्रचारक लोग आते हैं.
And many Indian Christians watch them on TV and believe everything they say.
और बहुत सारे भारतीय लोग, मसीही लोग टीवी पे इन प्रचारकों को देखते हैं और हर एक बात जो बोलते हैं उस पर वो लोग विश्वास कर लेते, मान लेते हैं उनकी बातों को.
But you must have real discernment.
लेकिन आपको सही तरह से परख करना आना चाहिए.
You must understand the word of God.
और आपको परमेश्वर के वचन को समझना चाहिए.
You must examine men's preaching and teaching.
आपको लोगों के प्रचार को जांचना है और परखना है.
Healings, miracles, and casting out demons.
चंगाइयां, आश्चर्यकर्म और दुष्टात्माओं को निकाला जाना.
Let me mention several points.
कुछ विषय, कुछ बातों में बोल देता हूँ आपको.
Number one,
पहली बात,
the reality of physical healing in the biblical testimony.
बाइबल के गवाही के अनुसार चंगाई की वास्तविकता क्या है.
And the ministry of Jesus and the apostles and the early church, it was very obvious there were real miracles and healings.
जब यीशु मसीह सेवा कर रहे थे और प्रेरित लोग सेवा कर रहे थे तो ये बहुत स्पष्ट है कि वो लोगों ने जो चंगाई किया है वो सच्ची और वास्तविक चंगाइयां थी.
Let's look at several examples.
आइए हम लोग कुछ उदाहरणों को देखें.
I trust we don't have to prove this to you.
मेरा मानना है कि मुझे ये साबित करने की आपको जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह की सेवा में और प्रेरितों की सेवा में सच्चे, वास्तविक, असली आश्चर्यकर्म हुए चंगाई से संबंधित.
The ministry of Jesus,
यीशु मसीह की सेवा में,
he cast out demons,
उसने दुष्टात्माओं को निकाला,
he healed the sick,
उसने बीमारों को चंगा किया,
he raised the dead,
उसने मृतकों को उठाया, उसने बंद आंखों को खोला, उसने बंद कानों को खोला,
he opened mute voices,
और उसने गूंगों को आवाज दी,
he healed the cripple,
और उसने लंगड़ों को चंगा किया,
he stretched out people's arms,
और जिनके हाथ सूखे हुए थे उनको ठीक कर दिया.
The Lord's ministry was characterized by much physical healing.
यीशु मसीह की सेवकाई शारीरिक चंगाई के द्वारा चिन्हित थी, पहचानी जाती थी.
Luke chapter 11,
लूका 11 अध्याय,
verse 14,
11 पद, 14 पद,
he was casting out a demon, it was mute, and the demon had gone out, and the mute man.
फिर वो एक दुष्टात्मा को निकालने लगा जो गूंगी थी, और ऐसा हुआ जो दुष्टात्मा निकल गई तो गूंगा बोलने लगा और भीड़ को बड़ा आश्चर्य हुआ.
Sometimes there is a direct connection between demonic activity and physical sickness.
कभी कभी दुष्टात्माओं का काम और शारीरिक बीमारी दोनों साथ में जुड़ी होती है.
And this case, this man was possessed by a demon and it hindered him from speaking.
और यहाँ पे इस घटना में एक आदमी है, इसके ऊपर दुष्टात्मा है और वो बोल नहीं पा रहा, इसलिए दुष्टात्मा की वजह से.
Sicknesses are caused by the natural effects of sin.
लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो पाप के स्वाभाविक प्रभाव के वजह से होती है.
Some sicknesses are caused by the spiritual effect of demonic activity.
लेकिन कुछ बीमारियां होती हैं जो दुष्ट आत्मा के शैतानी कार्यों के कारण बीमारियां होती हैं, शारीरिक बीमारियां.
All sickness is not a result of demonic activity.
इस बात को ध्यान रखिएगा, सारी बीमारियां, सारी शारीरिक बीमारियां दुष्टात्मा के शैतानी कार्यों के परिणाम की वजह से नहीं होता है. ये फर्क समझिएगा, सारी शारीरिक बीमारियां जरूरी नहीं है कि दुष्टात्मा और शैतानी कार्यों के कारण हो.
But sometimes sickness has been influenced by demonic power.
लेकिन कभी कभी बीमारियां, शारीरिक बीमारियां शैतानी ताकतों के प्रभाव के कारण होती हैं.
Verse 14,
14 पद देखिए यहाँ पे,
says the demon came out.
और यहाँ पे लिखा है कि दुष्टात्मा निकल गई.
Now let me ask you a question.
मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता
हूँ. Did you ever wonder this?
क्या आपने कभी सोचा इस बात को?
Where did that demon go?
कहाँ चला गया वो दुष्टात्मा?
Let me ask you a question.
मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ.
Did this demon die?
क्या ये दुष्टात्मा मर गया?
No. Do demons die?
क्या दुष्टात्मा मर जाते हैं?
This demon is still alive.
ये दुष्टात्मा तो अभी भी जिंदा है.
After 2,000 years.
2,000 साल के बाद भी.
Where is he?
कहाँ है ये दुष्टात्मा?
Listen carefully.
ध्यान से सुनिए इस बात को.
There is still demonic activity in the world.
अभी भी इस समय भी संसार में शैतानी हरकतें हो रही हैं.
There is still demonic possession and oppression in the world.
और शैतानी प्रभाव और शैतान लोगों को अभी भी कब्जा में करता है.
And sometimes there's still demonic influence on people's physical condition.
और कभी कभी लोगों की शारीरिक परिस्थितियों के ऊपर शैतानी हरकतों का असर होता है.
Now, if someone is born with a crippled leg, is that demonic activity?
अगर कोई बच्चा पैदा होता है टेढ़े पैर की लेकर के लंगड़ा पैदा होता है तो क्या वो शैतानी हरकत की वजह से?
If someone is born with a crippled leg, is that a result of his own personal sin?
अगर कोई बच्चा लंगड़ा पैदा होता है क्या वो अपने व्यक्तिगत पाप की वजह से लंगड़ा पैदा हुआ है?
But the Jews in the first century thought that way.
लेकिन जो यहूदी लोग पहली शताब्दी में थे वो लोग ऐसा ही सोचते थे.
John chapter 9.
यूहन्ना का नौवां अध्याय.
John 9. A man blind.
एक आदमी जो अंधा है.
What did the disciples ask Jesus?
शिष्यों ने यीशु से क्या पूछा?
Lord, who sinned, this man or his father, parents, that he was born blind?
प्रभु जी किसके पापों की वजह से अंधा पैदा हुआ? अपने पापों की वजह से कि इसके माता पिता के पापों की वजह से अंधा पैदा हुआ?
They were thinking that this blindness was a result of someone's sin.
और वो लोग सोच रहे थे कि उस अंधे व्यक्ति के अंधापन किसी के पापों के परिणाम की वजह से है.
Natural physical defects in birth are not a result of demonic activity.
शारीरिक जो शारीरिक जो गड़बड़ी होती है लोगों के शरीर में जो प्राकृतिक बचपन से होता है वो आत्मिक शैतानी कारणों से नहीं होता है.
They are the result of the ordinary consequences of being in a sinful world and born with a sin within us.
लेकिन हम जो बच्चे लोग शारीरिक तौर से कमजोर या गड़बड़ पैदा होते हैं वो एक पाप में संसार में रहने का स्वाभाविक परिणाम है.
You understand what we're saying?
फर्क समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं?
Physical illness is a result of ordinary natural causes.
और कुछ शारीरिक जो गड़बड़ियां होती हैं वो स्वाभाविक प्राकृतिक कारणों की वजह से होते हैं. स्वाभाविक और प्राकृतिक कारणों की वजह से कुछ शारीरिक गड़बड़ियां.
Other physical illnesses can be the result of demonic activity.
लेकिन कुछ और शारीरिक गड़बड़ियां होती हैं वो शैतानी कार्यों की वजह से भी हो सकती हैं. तो दोनों हो सकता है.
Verse 15, they accused him to cast out demons by Beelzebub, the ruler of the demons.
और फिर वहां पे लूका उसके 11 अध्याय उसके 15 पद में कुछ लोग कहने लगे आप यीशु मसीह कहने लगे वो दुष्टात्माओं को बेलज़बूल की ताकत से निकालते हैं शैतान की ताकत से निकालते हैं.
Jesus said that demons do not cast out demons.
तो यीशु मसीह ने कहा कि शैतान जो है शैतान को नहीं निकालता है.
A kingdom divided against itself will lay waste a house divided cannot stand.
एक राज्य जो आपस में फूट जिसमें पड़ जाए वो खड़ा नहीं रह सकता वो नाश हो जाएगा.
And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand?
तो मतलब दूसरे शब्द में यीशु मसीह कह रहा है शैतान स्वयं ही अपने विरोधी हो जाएगा तो उसका राज कैसे स्थिर रह सकता है?
Notice verse 20.
20 पद देखिए.
I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you.
तो यीशु मसीह ने कहा यदि मैं परमेश्वर की सहायता से परमेश्वर की उंगली से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचता है.
One of the purposes of miracles in the life of Christ was to inaugurate and to show that the kingdom of God had come.
और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है. इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि यीशु मसीह की सेविकाई का एक मुख्य उद्देश्य ये था ये दिखाना कि परमेश्वर के राज का उद्घाटन आरंभ शुभारंभ हो गया है.
Jesus uses an illustration. illustration or he tells a small story.
और फिर वहाँ पे यीशु मसीह एक छोटी सी घटना कहानी या दृष्टांत का उपयोग करते समझाने के लिए.
Look in verse 21.
21 पद में देखिए वहाँ पे.
21.
21 पद में.
When a strong man fully armed guards his house, his possessions are undisturbed.
और जब एक बलवंत व्यक्ति पूर्णतः हथियार बांधे अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति सुरक्षित रहती है.
But when someone stronger than he is attacks him and overpowers him, he takes away from him all his armor which he relied and he distributes his plunder.
पर जब उससे भी अधिक बलवंत कोई व्यक्ति उस पर आक्रमण करके उसे पराजित करता है उसके समस्त हथियारों का जिन पर भरोसा रखता था छीनता है और संपत्ति को लूट करके मार देता है. मैं आपसे प्रश्न कई बार पूछ चुका हूँ पहले.
And this story, who is verse 21, the strong man?
और इस कहानी में 21 पद में कौन है जो बलवंत व्यक्ति है? बलवंत व्यक्ति कौन है 21 पद में? शैतान है.
What is his house?
और उसका घर कहाँ है? उसका घर कहाँ है? शैतान घर कहाँ है?
This world.
ये संसार है.
Who are his captive possessions?
और उसकी संपत्ति क्या है?
All unbelievers.
सारे गैर विश्वासी लोग.
God said, "We are of God, but the whole world lies in the power of the evil one."
और यूहन्ना कहता है कि हम तो परमेश्वर के हैं, लेकिन संपूर्ण संसार शैतान के हाथ में पड़ा हुआ है.
Jesus said to the Pharisees, "You're not Abraham's children. You are children. Your father is the devil."
और यीशु मसीह ने तो फरीसियों से कहा कि तुम्हारा पिता इब्राहिम नहीं है, तुम्हारा पिता तो शैतान है.
Paul says in 2 Corinthians 4 that the God of this world has blinded the minds of unbelievers.
और दूसरे कंटेंस चौथे अध्याय में पॉलस कहता है इस संसार के ईश्वर ने गैर विश्वासियों की आंखों को अंधा कर दिया है.
Now notice verse 22.
अब देखिए 22 पद को.
When someone stronger than he attacks him and overpowers him.
और वहाँ पे लिखा है कि जब कोई बलवंत व्यक्ति से अधिक बलवंत उस पर आक्रमण करता है. और यहाँ पे कौन है उस बलवंत से भी अधिक बलवंत?
Who is the one stronger than the strong man?
कौन है यहाँ पे वो बलवंत से भी ज्यादा बलवंत व्यक्ति? Jesus.
Jesus.
यीशु मसीह.
He enters the strong man's house.
और यहाँ पे यीशु मसीह उस बलवंत व्यक्ति के घर में घुस करके.
What does that mean?
मतलब क्या हुआ?
He has come into this world.
मतलब वो इस संसार में आ गया.
And he overpowers the strong man.
और वो जो बलवंत व्यक्ति है उसके ऊपर वो उसको पराजित कर देता है, उसको उसके ऊपर हावी हो जाता है वो.
How does he do that?
कैसे हावी होता है प्रभु जी?
Life, death, and resurrection.
उसके जीवन के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा और अपने पुनरुत्थान के द्वारा, तीन चीजों के द्वारा. अपने जीवन में
he taught the truth of God,
उसने परमेश्वर के सत्य को सिखाया.
And he cast out the demon.
और उसने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला.
And he was saying now that the kingdom of God has come.
और ऐसा करने के द्वारा यीशु मसीह बार बार कह रहे थे कि परमेश्वर का राज्य अब आ गया है, निकट है.
The promised Messiah has arrived.
जो प्रतिज्ञा किया वो मसीह है, मसीहा था, वो पहुंच गए यहाँ पे.
God's rule, God's power, God's kingdom has entered into this world.
परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का उपस्थित अब इस संसार में प्रवेश कर चुका है. और वो जो बलवान व्यक्ति उसके घर में घुस गया वो. और अपने शब्दों के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा. और वो जो शैतान जिसके पास मृत्यु के ऊपर ताकत थी उसको उसने ताकतहीन कर दिया. और अपने मृत्यु से जी उठने के द्वारा
transferred us into the kingdom of his beloved son.
उसने हमको अंधकार के साम्राज्य से छुड़ा करके उसके पुत्र के राज में हस्तांतरित कर दिया.
So what were the purpose of miracles in the life and ministry of Jesus Christ?
तो यीशु मसीह के जीवन और सेवा में आश्चर्य कर्मों का उद्देश्य क्या था फिर बताइए?
Show that the kingdom of God had come.
वो ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का राज्य अब आ गया है, पहुंच गया है.
The kingdom of God means God's rule, God's power, God's authority.
परमेश्वर के राज्य का मतलब यह है परमेश्वर का साम्राज्य, परमेश्वर का अधिकार और परमेश्वर की उपस्थिति.
And that was Jesus' first message.
और यह है यीशु मसीह का पहला संदेश.
The kingdom of God has come.
परमेश्वर का राज्य आ गया है.
It is among you.
आपके बीच में, मध्य में, आपके साथ में. आप उसके राज में कैसे प्रवेश करोगे? परमेश्वर के राज में पश्चाताप करो और सुसमाचार पे विश्वास करो. जब तक कोई व्यक्ति नया जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख ही नहीं सकता है. जब तक कोई व्यक्ति पानी और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है. और आज दोपहर में हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, वाले खंड को हम कैसे अनुवाद करेंगे?
What does it mean to be born of water and the Spirit?
पानी और आत्मा से जन्म लेने का मतलब क्या हुआ?
Many people misinterpret that verse.
क्योंकि कई लोग पानी और आत्मा से जन्म लेने वाले पद का कई बड़ा उल्टा सीधा गड़बड़ मतलब निकालते हैं.
But it's very clear.
लेकिन बहुत स्पष्ट है,
the promised Messiah was coming.
जो प्रतिज्ञा किया हुआ मसीहा आता है.
He said the deaf would hear.
तो वो कहता है, कहा गया था कि बहरे लोग सुनेंगे, और वो अंधों को आंखें देगा, और जो गरीब लोग हैं उनके पास सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा. और यीशु मसीह ने कहा, जब मैं परमेश्वर की उंगली के द्वारा शैतान को बाहर निकालता तो तुम जान जाओगे कि परमेश्वर का राज्य आ गया है.
Outside into this world.
और परमेश्वर का राज बाहर से इस संसार के भीतर प्रवेश करता है.
And he frees the captives from the devil.
और जो बंधुआई में जो लोग हैं उनको प्रभु जी छुड़ा लेते हैं शैतान के बंधुआई से.
They take them out of the dominion of the devil.
और शैतान के राज में से छुड़ा करके
brings them under the authority of the living God.
और जीवित परमेश्वर के अधिकार के भीतर ले आते हैं प्रभु जी.
So that's why Jesus performed miracles.
और इसीलिए यीशु मसीह ने आश्चर्यकर्म किए. एक पहली बात,
ट्रू कंपैशन अपॉन द नीडी.
यीशु मसीह ने जो आवश्यक जो जरूरतमंद लोग थे उनके ऊपर वास्तव में दया की.
नंबर टू,
दूसरी बात,
इट वॉज अ साइन ऑफ द कमिंग ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड.
यीशु मसीह परमेश्वर के आने वाले साम्राज्य का ये चिंता. तो दो चीजें, प्रभु जी जब ऐसा कर रहे हैं, आशा कर्म कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं और दुशासन छुड़ा रहे हैं, तो प्रभु जी क्योंकि गरीबों पर दया कर रहे हैं और साथ ही साथ ये दिखा रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य अब आ गया है.
In Acts chapter 2,
प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय.
Also miracles and healings and signs and wonders accomplished by the apostles.
और यहाँ पर भी प्रेरितों के द्वारा आश्चर्य काम हो रहे हैं, चंगाई हो रही हैं और बड़े बड़े चिन्ह हो रहे हैं.
Verse 43. Everyone kept feeling a sense of awe, and many wonders and signs were taking place through the apostles.
प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय से 43 वर्ष, प्रत्येक व्यक्ति में भय छाया और बहुत से आश्चर्यकर्म और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा होते रहते थे.
And in chapter 3 you have a specific example of Peter and John healing a lame man at the gate in the temple.
और तीसरे अध्याय में यहाँ पे पत्रस और यूहन्ना के द्वारा मंदिर में चंगाई का एक साफ साफ उदाहरण दिया गया. कौन से आश्चर्यकर्म हो रहे हैं?
Peter immediately directed their attention to the gospel.
और पत्रस ने तुरंत ही वहाँ पे लोगों का ध्यान सुसमाचार की ओर मोड़ दिया. और पत्रस ने कहा, उन लोगों देखकर कहा, हे इज़राइलियों, तुम क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस तरह ताक रहे हो, मानो हमने अपनी सामर्थ्य और शक्ति से इस मनुष्य को चलने योग्य बना दिया है. और फिर उसके तुरंत बाद पत्रस ने सुसमाचार का प्रचार किया. 13 पद देखिए वहाँ पे,
अकॉर्डिंग टू द प्रॉमिस ऑफ गॉड थ्रू द फादर.
और ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार है जो उसने हमारे पूर्वजों को दी थी. 14 पद,
यू रिजेक्टेड योर ओन मसीहा.
तुमने अपने स्वयं के मसीहा को तिरस्कार किया, अस्वीकार किया. 15 पद,
यू पुट हिम टू डेथ.
तुमने उसको तो मार दिया.
बट गॉड रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड.
लेकिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिला दिया.
वी आर विटनेसेस.
और हम उसके गवाह हैं.
व्हाट्स द कंक्लूजन.
और इसका अंत में क्या निष्कर्ष निकलता है? 16 पद,
बेसिस ऑफ फेथ इन हिज नेम जीसस, दिस मैन हु यू सी हैज बीन हीलड.
और उस विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह के नाम पे है, उस मनुष्य ने इससे चंगा किया है. तो प्रेरितों ने आश्चर्यकर्म किए.
Why?
क्यों?
It was to show people the coming of the power and kingdom of God.
वो ये दिखाने के लिए कि परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का राज्य आ गया. किया है और इन आश्चर्य कर्मों के द्वारा लोगों को उद्धार की ओर लेकर के जा रहे थे प्रेरित लोग. फिर तो काम उसके आठवें अध्याय में देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं शारीरिक चंगाई के बारे में और आश्चर्य कर्मों की वास्तविकता के बारे में.
Notice what it says in Acts chapter 8, verse 5.
और यहाँ पे देखिए आठवें अध्याय में प्रेरित काम आठवें अध्याय पांचवें पद में क्या कह रहा है. आठवें अध्याय पांचवें पद में
It says, Philip went down and began to proclaim Christ to them.
और यहाँ पे लिखा है फिलिपुस समारिया नगर में जाकर के लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा.
And verse 6, they were paying attention when they heard and saw the signs he was doing.
और जब लोगों ने उसकी बातें सुनी और उन चिन्हों को देखा तो वो ध्यान से सुन रहे थे उसकी बातों को.
And they cast out many unclean spirits.
और वहाँ पे लिखा है बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं निकाली गई.
And many that were paralyzed and lame were healed.
और बहुत सारे लंगड़े और लकवे के मारे थे वो चंगे हो गए.
And there was much rejoicing. In the city.
और आठवें ने देखा उस नगर में बहुत आनंद छा गया.
Now, what's the purpose of healing in this passage?
और यहाँ पे इस स्थल में जो चंगाई हो रही है उनका उद्देश्य क्या है.
It is to accompany the preaching of the word of God.
और यहाँ पे जो वचन का प्रचार किया जा रहा है उसके साथ साथ हो रही है चंगाइयाँ.
It is to lead people and to get their attention concerning the power of God.
और यहाँ पे आश्चर्य कर्मों का उद्देश्य है कि लोग परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के सामर्थ्य की ओर ध्यान लगाएं.
Physical healing is not salvation.
क्योंकि जो उद्धार है जो शारीरिक चंगाई है उससे उद्धार नहीं हो सकता है.
It may lead to salvation.
यद्यपि शारीरिक चंगाई से उद्धार की ओर जा सकते हैं ले जा सकता है हमको उद्धार की ओर.
So notice what it says.
इसलिए ध्यान दिया यहाँ पे क्या लिखा है.
Verse 12.
12 पद में.
When they believed Philip preaching the good news about the kingdom of God and the name of Jesus.
तो यहाँ पे लिखा है प्रेतगाम आठवें अध्याय के 12 पद में जब उन्होंने फिलिपुस पर का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज का सुसमाचार यीशु के नाम का प्रचार करता था.
Our men saved.
तो लोग यहाँ पे कैसे बचाए गए दिखाइए.
Not by healing.
आश्चर्य कर्मों के द्वारा नहीं चंगाई के द्वारा नहीं.
Romans chapter 10.
रोमियो से 10वां अध्याय कैसे बचाए जाते हैं लोग का उद्धार कैसे होता है. रोमियो 10वां अध्याय कैसे उद्धार होता है.
Faith comes by hearing and hearing by the word of Christ.
और विश्वास कैसे होता है सुनने के द्वारा. सुनना कैसे होता है मसीह के वचन के द्वारा होता है.
Faith doesn't come by healing.
विश्वास चंगाई से नहीं आता है.
It comes by hearing.
वो सुनने के द्वारा आता है.
It may lead to salvation.
और चंगाई से हम उद्धार की ओर हो सकता बढ़ सकते हैं लिया जा सकता है.
Remember, some people Jesus healed were not saved.
आपको मालूम है कई लोग जिनको यीशु मसीह चंगा क्या उनका उद्धार नहीं हुआ है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. लूका उसका 17 अध्याय यीशु मसीह रास्ते में चले जा रहे हैं और 10 कोढ़ी लोग दूर खड़े हुए थे
और
उन्होंने कहा यीशु दाऊद के पुत्र हम पे अनुग्रह कर.
And what did Jesus say?
और यीशु ने क्या कहा.
Go show yourself to the priest.
जाओ तुम अपने आप को याजक को दिखाओ.
And when they turned,
और जब वो लोग पलट गए
they were healed.
वो लोग चंगे हो गए.
All of them were healed.
वो 10 के 10 चंगे हो गए.
One of them,
एक ही जन
a Samaritan,
और जो कि सामरी जन है उसने देखे चंगा हो गया.
He turned around,
वो वापस पलट गया है यीशु मसीह पास आया उसके पैरों पर गिर गया.
What did Jesus say?
और यीशु मसीह ने क्या कहा.
Were there not 10 healed?
क्या वो 10 नहीं थे जिनको चंगा किया गया.
Where were they?
वो कहाँ है बाकी के 9 जन. क्या केवल यही परदेशी जो सामरी है वो आकर के परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है महिमा कर रहे हैं. परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्या कहा उस सामरी से. जाओ अपने रास्ते पे जाओ.
Faith has saved you.
तुम्हारे विश्वास ने तुमको बचा लिया चंगा किया है.
Now let's do some arithmetic.
और यहाँ पे हम कुछ गणित करेंगे.
How many were physically healed?
कितने लोग चंगे हुए थे.
How many were saved?
कितने लोग बच गए वहाँ पे. ध्यान से इस बात को. जितने लोग यीशु मसीह ने चंगा किया वे सब लोग बचे नहीं है.
Physical healing can lead to salvation if it is accompanied by the clear preaching of the word of God.
लेकिन शारीरिक चंगाई उद्धार की ओर ले जा सकती है अगर परमेश्वर के सुसमाचार का स्पष्टता से प्रचार किया जाए सफाई से.
But many people confuse conversion with physical healing.
लेकिन कई लोग जो हैं हृदय परिवर्तन को चंगाई से गड़बड़ा देते हैं.
I've told you many times.
हम आपको कई हम कई लोग बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं इस बात को, और मैं उनसे ये प्रश्न पूछता हूँ, अब मैं लोगों से पूछता हूँ, भाई तुम मसीह कब बने बताओ? फिर वो कहते हैं भैया मैं तो अस्पताल में था, मेरे को कैंसर था और मैं मरने वाला था, कोई आशा नहीं थी। कुछ मसीह लोग आए, उन्होंने अपना हाथ रखा मेरे ऊपर और मैं चंगा हो गया, अब मैं मसीह हो गया। ध्यान से सुनिए बात को। शारीरिक चंगाई सच्चा हृदय परिवर्तन नहीं है। यद्यपि शारीरिक चंगाई हृदय परिवर्तन की ओर ले जा सकती है, लेकिन शारीरिक चंगाई के साथ साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार होना चाहिए। और इसलिए जब आप लोगों को प्रचार करें, और चाहे उनके शारीरिक बीमारी हो या कोई गड़बड़ी हो उनके शरीर में,
यू नीड टू मेक श्योर दैट दे अंडरस्टैंड देयर डीपेस्ट नीड इज नॉट फिजिकल हीलिंग।
आपकी जिम्मेदारी है कि आपने लोगों को बताएं कि उनकी सबसे बड़ी आवश्यकता शरीर की चंगाई नहीं है, और परमेश्वर चाहे तो उनको चंगा कर सकता है उनके शारीरिक बीमारी से, लेकिन शारीरिक चंगाई उनकी सबसे गहरी, सबसे जरूरत, सबसे बड़ी जरूरत नहीं है। आपको याद है यीशु मसीह एक बार एक घर में प्रचार कर रहे थे और शिक्षा दे रहे थे, आपको कहानी मालूम है, वो घर पूरा भरा हुआ था, वहाँ पे कुछ घर में कोई जा नहीं पा रहा था, और लेकिन एक आदमी जिसको लकवा मारा गया था, उसके चार दोस्त थे, वो लोग दरवाजे से अंदर जा नहीं पाए, तो उन्होंने क्या किया, छत के ऊपर चढ़ गए और छत को खोद डाला उन्होंने, और छत से नीचे डाल दिया उसको उन्होंने, और वो यीशु मसीह के बिल्कुल सामने आकर के गिर गया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम चंगे हो गए, क्या यही कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तो आप क्या सोचते हैं, जो उसके चार दोस्त लोग छत थे जिन्होंने उसको नीचे उतारा था, वो लोग क्या सोच रहे हैं जब उन्होंने सुना होगा, क्या तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, मैंने हम लोगों ने तो उसको नीचे डाला ताकि वो चंगा हो जाए। लेकिन यीशु मसीह उसकी सबसे बड़ी, सबसे गहरी आवश्यकता को जानते थे। और फिर लोगों ने कहा कि कौन है जो पापों को क्षमा कर सकता है? और फिर यीशु मसीह ने कहा, ताकि तुम लोग जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पापों को क्षमा करने की आवश्यकता है, इसलिए मैं इस मनुष्य से कहता हूँ खड़े हो और तुम चलो।
And he got up and walked.
और फिर वो अपनी खाट उठा के चल दिया।
And it proved that Jesus had the power to forgive sin.
और जब वो शारीरिक तौर से चंगा हो गया, चलने लगा, तो उसने इस बात को साबित कर दिया कि यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है पापों को क्षमा करने की।
Listen carefully.
ध्यान से इस बात को।
We could multiply examples.
हम कई उदाहरण आपको दे सकते हैं, अनगिनत उदाहरण दे सकते हैं।
But it's very obvious from the Word of God.
लेकिन परमेश्वर के वचन से बहुत ही स्पष्ट है।
The life and ministry of Jesus.
यीशु मसीह की सेवा के और जीवन से।
The life and ministry of the apostles.
प्रेरितों के जीवन और सेवा से।
And in some cases, the life and ministry of others.
और दूसरों के भी जीवन और सेवा से।
Whether it was Philip or Stephen.
चाहे फिलिपुस हो और चाहे स्टेफनुस हो।
They too performed.
उन्होंने भी चंगाइयां की आशक्रम के।
Now, number two,
दूसरी बात,
very quickly,
बहुत जल्दी से,
we talk first of all about the reality of physical healing.
हमने सबसे पहले बात किया शारीरिक चंगाई की वास्तविकता के बारे में, सच्चाई के बारे में।
Number two,
दूसरी बात,
what is the nature of this physical healing?
शारीरिक चंगाई का स्वभाव क्या है, क्या बात क्या है उसके आखिर, उसके चरित्र गुण क्या है, पहचान क्या है उसके?
Just very briefly,
बहुत जल्दी,
it was sudden,
वो उस समय जो शारीरिक चंगाई थी वो तुरंत होता था, खट से,
yes, it was immediate,
एकदम से जैसी होता था वो तुरंत होता था,
supernatural,
और अलौकिक होता था,
and it was an obvious physical change,
और प्रत्यक्ष साफ साफ शारीरिक बदलाव आता था उन लोगों में।
The dead were raised.
मरे हुए एकदम से चंगे रहते थे।
Blind could see.
अंधों जिनके आंख ने एकदम से आंखा देते। बहरे एकदम से सुनने लगते थे।
Dumb could speak.
गूंगे लोग एकदम से बोलने लगते थे।
Jesus healed different people in different ways at different times.
यीशु मसीह ने अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में चंगा किया।
He told the leper, "Go show yourself to the priest."
यीशु मसीह ने एक कोढ़ी का जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ।
Another time.
दूसरी बार उसने कहा.
What did he do?
उसने क्या किया?
It's very interesting.
बहुत रोचक बात है.
Man couldn't speak.
बोल नहीं पाता था आदमी.
What did Jesus do?
यीशु मसीह ने क्या किया? थूका.
And he put it on the man's tongue.
Huh?
He put it on his tongue. He opened his mouth and he put it on his tongue. Well, he did two. One he spit on his feet, the other he spit on the ground. But I'm talking about he spit and he put his finger in the man's tongue.
यीशु मसीह ने थूका और थूक को लेकर के उस आदमी के मुंह पे लगा दिया.
Another time he spit on the ground.
और दूसरी बार उसने
some mud.
और दूसरी बार उसने थूका और उसने मिट्टी को मिलाया.
And he put it on a man's eye.
और उसके आदमी की आंख पे लगा दिया.
Let me ask you a question.
मैं प्रश्न पूछ रहा था आपसे.
Would you let me spit on my finger and put it in your mouth?
जैसे यीशु मसीह ने थूक करके अपनी उंगली में डालकर सामने के मुंह में लगाया था, क्या आप हमको लगाने देंगे अपने मुंह में थूक मेरा?
No, you would.
आप नहीं करने देंगे ना हमको ऐसे?
Let me ask you a question.
मैं प्रश्न पूछना चाहता था आपसे.
Why did Jesus do that?
यीशु मसीह ने क्यों थूक लगाया अगले आदमी के मुंह में?
You ever thought about that?
कभी सोचा आपने इसके बारे में?
Or another time he spits on the ground.
और फिर दूसरी बार उसने जमीन में थूका.
Go wash in the pool of Siloam.
अब जाओ सिलोम में जाकर के उस अपने अपने आंख को धो लो.
Why did he do that?
क्यों किया उसने ऐसे?
I want you to think about that.
मैं चाहता हूँ आप सोचिए इसके बारे में.
I want you to come back at 2:30.
और आप 2:30 बजे वापस आएंगे, हमको बताएंगे इसका उत्तर.
And we'll continue this discussion.
और फिर इस वार्तालाप को हम जारी रखेंगे.
And if anyone's having problems speaking.
और अगर आप में से किसी को बोलने की दिक्कत हो रही है तो आप मेरे कमरे में ऊपर आइएगा. ध्यान सुनिए इस बात को. ध्यान सुनिए इस बात को. मेरा थूक आपको बीमार कर देगा. लेकिन यीशु मसीह का थूक लोगों को ठीक कर दिया. लेकिन हम 2:30 बजे बात करेंगे आगे, ठीक है?